लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि विश्व के अर्थ शास्त्रियों को बहिष्कार की अर्थ व्यवस्था को स्वीकार कर जन कल्याण हेतु नित्य नए मार्गों की खोज का साहस मिले। आमीन। नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। यह ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना की गई है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है, पर्वतों के शिखर उसी के हैं। समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए हैं और उसी के हैं। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 95वें भजन के 4 से लेकर 8 तक के पद। इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम का विगत प्रसारण समाप्त किया था। यह भजन एक इब्रानी गीत है जिसमें भक्तों को ईश्वर की आराधना के लिए आमंत्रित किया गया है। उक्त पदों में भजनकार ईश्वर के अद्भुत कार्यों का बखान करते हुए लोगों से उनके प्रति अभिमुख होने का आग्रह करता है। उसका कहना था कि हम केवल कुछ मांगने के लिए ही ईश्वर के समक्ष उपस्थित नहीं होवें, बल्कि उनके चमत्कारी कार्यों के लिए उनकी आराधना और उनकी स्तुति करें, इसलिए कि जल, थल, नभ, सागर और पर्वत सबके सब प्रभु ईश्वर की सृष्टि हैं, वे सबके सब प्रभु के हैं। वस्तुतः भजनकार का अनुरोध है कि हम ईश्वर की वाणी के प्रति अपने हृदयों को कठोर न करें, बल्कि विनम्रता पूर्वक उनकी आवाज सुने और उसी के अनुकूल जीवन यापन करें। आगे 8वें पद में कहता है, ओह यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले मरीबा में, जैसा कि मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। इन पदों में भजनकार ईश्वर को मेषपाल और मनुष्यों को उसके चरागाह की प्रजा कहकर पुकारता है। कहने का तात्पर्य यह कि ईश्वर ही हैं जो हमें संभालते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार मेषपाल अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। वह कहता है कि हम मरीबा और मस्सा की मरुभूमि में जो हुआ था उसे नहीं दुहराएं। मरुभूमि में लोगों ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। जब वहां पीने के लिए पानी नहीं मिला, तब वे ईश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाने लगे थे और ईश्वर के अस्तित्व पर ही प्रश्न कर बैठे थे। श्रोताओ, हम भी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से बहुत कुछ मांग लेते हैं, किंतु कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी प्रार्थना अनसुनी रह जाती है और हम ईश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाने लग जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं कि हमने ईश्वर को पुकारा और उन्होंने हमारी सुनी तक नहीं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा विश्वास पक्का नहीं होता, हमारा विश्वास कमजोर होता है। सतत प्रार्थना द्वारा हम ईश्वर में अपने विश्वास को सुदृढ़ करें और जो कुछ भी हमारे जीने के लिए आवश्यक है, जिसकी हमें जरूरत है, वह यूं ही हमें मिल जाएगा।
एक ईश्वर दो है कृपालु, तेरी स्तुति हो आराधना हो। एक ईश्वर दो है कृपालु, तेरी स्तुति हो आराधना हो। एक ईश्वर
श्रोताओ, स्तोत्र ग्रंथ के 95वें भजन के 9वें और 10वें पदों में भी भजनकार मरीबा और मस्सा के लोगों के बारे में बताता है। ईश्वर की वाणी को दुहराते हुए कहता है, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे वहां चुनौती दी, मेरे कार्य देखकर भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली। वह पीढ़ी मुझे 40 वर्षों तक अप्रसन्न करती रही और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग नहीं जानते। तब मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। श्रोताओ, मरीबा और मस्सा की मरुभूमि से गुजरने वाले लोग वही लोग थे जिन्हें मिस्र की दासता से छुड़ाकर प्रभु ने प्रतिज्ञात देश जाने का आदेश दिया था। वही लोग जिन्होंने प्रभु ईश्वर द्वारा मिस्र पर भेजी गई आपत्तियों को, यानी कि ईश्वर के चमत्कारों को देख लेने के बाद भी ईश्वर के अस्तित्व पर आशंका जताई थी, ऐसे ही कृतघ्न लोगों के लिए ईश्वर को फटकार बतानी पड़ी थी। वस्तुतः श्रोताओ, स्तोत्र ग्रंथ के रचयिता ने इस भजन में प्राचीन व्यवस्थान के गणना ग्रंथ में निहित प्रभु ईश्वर की वाणी का संदर्भ देकर उक्त बातें कही है। इस ग्रंथ के 14वें अध्याय के 33वें और 34वें पदों में इसराइली प्रजा के 40 वर्षों तक उजाड़ प्रदेश में भ्रमण और उस दौरान प्रभु ईश्वर की चेतावनी के बारे में लिखा है, तुम्हारे पुत्र चरवाहे होकर 40 वर्ष तक उजाड़ प्रदेश में मारे मारे फिरेंगे और इस प्रकार तुम्हारे विश्वासघात का फल तब तक भुगतेंगे जब तक तुम्हारे शरीर उजाड़ खंड में ढेर न हो जाए। तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया, उनका हर दिन एक वर्ष गिना जाएगा, उसके अनुसार तुम्हें 40 वर्ष तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा और तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने का फल क्या होता है। श्रोताओं, इस उपदेश का अभिप्राय वास्तव में यह कि यदि ईश्वर में हमारा विश्वास कमजोर है या फिर यदि हम ईश्वर के अस्तित्व पर ही शक करने लग जाते हैं तो हम कैसे उनके समक्ष मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में अथवा गिरजाघर में प्रवेश कर सकते हैं। यदि हम ईश्वर के मार्गों को नहीं जानते या नहीं जानना चाहते हैं तो कैसे हम उनकी आराधना अथवा स्तुति करने का दावा कर सकते हैं। 95वें भजन का रचयिता हमसे आग्रह करता है कि हम तन मन से प्रभु ईश्वर की शरण जाएं और सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना करते समय केवल हमारी जिह्वा ही प्रार्थना नहीं करे, अपितु हमारा मनोमस्तिष्क, हमारी आत्मा उस प्रार्थना में लीन रहे। प्रश्न उठता है कि मन, हृदय और आत्मा से प्रार्थना करने का अर्थ है क्या? इसका अर्थ प्रभु येसु ख्रीस्त हमें समझाते हैं। येसु कहते हैं कि ईश्वर के प्रांगण में या ईश्वर के राज दरबार में तुम तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक तुम अपने भाई और पड़ोसी को क्षमा नहीं कर दो, जब तक तुम उनसे प्रेम करना नहीं सीख लो। संत मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 23वें और 24वें पदों में हम प्रभु येसु मसीह के शब्दों को इस प्रकार पढ़ते हैं, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ।
प्रार्थना करते हैं। वंदना करते हैं।
वंदना करते हैं।